प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है में। मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों आज जिस कलाकार से हम आपका परिचय कराने वाले हैं, उनके यूं तो बहुत से सिंगल्स यूट्यूब और अन्य सोशल माध्यमों से रिलीज हो चुके हैं, पर अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म प्रदर्शित होने वाली है जिसका नाम है बाबूजी एक टिकट मुंबई। इस फिल्म के वो संगीतकार हैं अल्ताफ सैयद, इनका नाम है। तो दोस्तों स्वागत करिए इस युवा संगीतकार अल्ताफ सैयद का। अल्ताफ भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर।
नमस्कार सजीव सारथी जी और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सुनने वालों, मैं सजीव सारथी जी का थैंक्स करना चाहूंगा जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर।
थैंक यू अल्ताफ भाई, और वाकई बहुत अच्छा लगता है जब कोई युवा संगीतकार इस तरह से श्रोताओं के रूबरू होता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा बताइए हमें अपने बारे में कि कैसे आपने, आपका ये संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ और कब शुरू हुआ?
संगीत का सफर एक्चुअली बहुत बचपन से ही शुरू हुआ। मेरी लाइकिंग संगीत की बचपन से थी, मैं खुद गाता भी था और बचपन से ही शौक रहा है। एक्चुअली फैमिली में मेरे कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ नहीं है, ना कोई मम्मी की तरफ से ना कोई डैडी की तरफ से, लेकिन मुझे बस गॉड गिफ्टेड शौक था इस चीज़ का। तो धीरे 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 जब लोगों में मैंने सुनाना शुरू किया, मेरे खुद के कंपोजिशन में जब मैं 10th के स्टैंडर्ड में था तब से मैंने खुद की कंपोजिशन शुरू किया, लेकिन उसके पहले से मैं गाता गुनगुनाता संगीत सुनता था। मैंने पुराने लोग जितने केएल सहगल से लेके अब तक सबको सुना है, वर्ल्ड म्यूजिक सुनता था, सब सुन के धीरे धीरे ग्रो हुआ है। तो लेकिन प्रोफेशनली मैं काफ़ी लेट इस फील्ड में आया हूँ। मैंने संगीत की शिक्षा भी ली है उस्ताद सरफराज अहमद खान साहब, किराना घराने का मैं शागिर्द भी हूँ। आफ्टर 24 ईयर्स का था तब मैं एक्चुअली इस प्रोफेशन में मैंने शुरुआत की।
तो अल्ताफ भाई जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली से कोई म्यूजिक से रिलेटेड नहीं था, तो ऐसे में जब आपने संगीत के क्षेत्र में आने का सोचा या अपना विचार रखा अपने फैमिली के साथ, तो कैसा था उनका रिएक्शन?
उनका रिएक्शन तो बिल्कुल शॉकिंग था, मतलब वो शॉक हो गए थे मेरी ये बात सुन के। एक्चुअली क्या होता है, जो भी इस फील्ड के नहीं है, जिनको इस फील्ड का पता नहीं है, तो वो लोग नहीं चाहते कि इतनी इनसिक्योर लाइन, पता नहीं है, उनको अपने ही बच्चे पे उतना भरोसा नहीं होता है, वो सेफ जाना चाहते, वो चाहते हैं डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे, या कोई अच्छा जॉब करे, या जिससे मंथली इनकम आए और कुछ फिक्स जिंदगी में कुछ करे। पर मुझे अपोज तो हुआ था काफ़ी, पर मैंने फिर कैसे उनको मनाया, काफ़ी टाइम लगा मुझे काफ़ी, इसीलिए मैं लेट भी हुआ हूँ इस फील्ड में प्रोफेशनली उतरने के लिए। वरना मैं मतलब पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, मैं अच्छा पढ़ाई करता था, तो सब चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ाई रिलेटेड कुछ करूँ, मतलब जैसे इंजीनियर बनूँ या कुछ ऐसा कुछ चीज़ करूँ। लेकिन म्यूज़िक मेरे बस दिलो दिमाग पर छाया हुआ था और मैं बस वही करना चाहता था, बस वही मेरा पैशन था। तो बहुत मुश्किल से मुझे इसकी इजाज़त मिली, पर फाइनली इजाज़त मिली। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह थी कि मुझे गाइडेंस बिल्कुल नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है इस फील्ड में। बस मुझे पता था कि मुझे म्यूज़िक करना है, मैं ये करता हूँ। और मैं जब अपने बड़ी बड़े संगीतकार जो सीनियर संगीतकार को सुनता था, मुझे लगता था ये काम मैं भी करता हूँ, मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा था, पर गाइडेंस बिल्कुल नहीं था। वो मैंने खुद ही कोशिश की हर जगह से, गुरुजी से सीख के, सब पता करके, और खुद ही अपने बल पे स्ट्रगल किया है
जी। तो उससे पहले आप क्या करते थे और बेसिकली क्या आप मुंबई से ही हैं?
जी मैं बेसिकली महाराष्ट्र से ही हूँ। महाराष्ट्र में एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है बीड, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ उस डिस्ट्रिक्ट से। 10th तक मैं वहीं मेरी पढ़ाई हुई है, उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। एक्चुअली मेरे मम्मी डैडी तो सब वहीं रहते थे गांव में काफ़ी टाइम तक, बस हाल ही में कुछ 6-7 साल पहले वो शिफ्ट हुए मुंबई। तो मैं यहाँ पर मेरे अंकल के पास रहने के लिए आया था, पढ़ाई करने के लिए, नेक्स्ट पढ़ाई करने के लिए आगे की। तो लेकिन पढ़ाई करते करते मैं ये सब चीज़ें करना शुरू कर दिया था मैंने।
अल्ताफ भाई जैसे आपने बताया कि आपने तालीम ली संगीत की, लेकिन संगीत निर्देशन की जो समझ होती है वो आपने किससे प्राप्त करी, किसी को असिस्ट किया क्या?
जी नहीं, संगीत निर्देशन की जो समझ है वो गॉड गिफ्टेड ही है। एक्चुअली मैं जब सीखता था तो मैं बहुत सारे संगीतकारों के साथ मतलब घूमता था, देखता था वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका काम करने का तरीका वो एडॉप्ट करता था। जैसा मेरे जो गुरुजी है वो संगीतकार साजिद वाजिद के मामा जी है, तो मैं उनके पास सीखता था, उनसे सुनता था कैसे संगीत कैसा लोग करते हैं क्या करते हैं, और बहुत सारे संगीतकारों से मैं मिलता था तो मुझे पता चलता था कि किस तरीके से काम होता है, तो मैं देख देख के ही एक्चुअली सीखा हूँ। बाकी जो कंपोजिशन जो करना है वो मुझे पहले समझ में नहीं आता कि ये मैं जो करता हूँ इसको कंपोजिशन बोलते हैं, वो जब मैं ना समझता तब से मैं वो चीज़ें करता था, कुछ नए गाने बनाता था, कुछ नई चीज़ें करता था, पर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि ये चीज़ है इसी को कंपोजिशन बोलते हैं, ये क्रिएटिविटी है, ये आप नई चीज़ कर रहे हो और ये करने से ही आप संगीतकार बनोगे। तो जब मुझे पता चला तो मेरे अंदर फिर वो कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं संगीतकार बिल्कुल बन सकता हूँ।
ओके अल्ताफ भाई, तो सबसे पहला ब्रेक आपको कब मिला और कैसे मिला, और वो थोड़ा सा बताइए कि वो फीलिंग कैसी रही आपकी जब आपको पहला ब्रेक मिला।
हाँ जी, पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे मिला, बहुत बड़े फोटोग्राफर है जो इस फोटोग्राफर जय सेठ जी, उन्होंने पहली बार एक्चुअली मेरा गाना मतलब फाइनल किया, डन किया कि नहीं ये बहुत अच्छा सॉन्ग है। उन्होंने मुझे पहले सिचुएशन दी थी, उनकी फिल्म आ रही है रोल साउंड कैमरा एक्शन जिसमें मेरा म्यूजिक है, तो वो एक्चुअली मेरी पहली फिल्म है जबकि वो अभी रिलीज नहीं हुई अब तक, पर फर्स्ट मेरा ब्रेक वो है एक्चुअली। तो उन्होंने मेरे गाने को पसंद किया, फर्स्ट टाइम मुझे उन्होंने ब्रेक दिया है, और उस फिल्म का मैंने सबसे पहले म्यूजिक किया है। उसके बाद फिर बाकी और फिल्में किए जिसमें से बाबूजी एक टिकट बम्बई जो अभी आने वाली है वो अभी पहले रिलीज हो रही है। और हाँ जी, ब्रेक मिलने के बाद ऑफ कोर्स बहुत खुशी हुई क्योंकि पहला ब्रेक था और अच्छी फिल्म थी, और इतने बड़े फोटोग्राफर थे जो पहली बार एक अच्छी फिल्म बॉलीवुड पे फिल्म बना रहे थे, वो फिल्म ही बॉलीवुड पे है कि बॉलीवुड जो स्ट्रगलर्स होते हैं वो उनको कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है और कितनी तकलीफ के बाद ब्रेक मिलता है और कितनी तकलीफ से वो उस सक्सेस को टिका भी पाते हैं, तो उस सिलसिले में वो फिल्म थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो फिल्म मुझे मिली, उसका गाना भी जब मैंने बनाया तो मुझे अपने आप को फील करके बनाया क्योंकि मैं उस कंडीशन से गुजर रहा था जब वो मैं गाना बना रहा था, जिस फिल्म की जो सिचुएशन थी उसी कंडीशन से मैं गुजर रहा था, तो वो गाना बहुत दिल से बना मेरा, तो मुझे बहुत खुशी हुई वो पहला ब्रेक मिलने के बाद।
तो अल्ताफ भाई, इस फिल्म के गाने अभी रिलीज नहीं हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि वो गाना जो आपने सबसे पहले आपका जो डन हुआ था वो गाना एक बार प्लीज हमारे श्रोताओं के लिए सुना दीजिए।
हाँ जी, वो गाना एक्चुअली सिचुएशन पे गाना है कि स्ट्रगलर्स है जो ब्रेक उनको नहीं मिल पा रहा है पर उनमें जोश बहुत है, वो बोल रहे हैं कि बस हम हर हाल में करके रहेंगे, तो उस सिचुएशन पे गाना था कि एग्रेशन वाला एक सॉन्ग है जिसको मेरी सिस्टर ने ही लिखा है ये, जिसकी लिरिक्स और मैंने ही गाया फाइनली। जी अभी तो गाना रिलीज नहीं हुआ पर मैं आपको सुना देता हूँ उसका स्टार्ट। ये फिल्मी दुनिया एक जाल है, जंजाल है, हाँ है मंजूर हमको इसकी मगर हर चाल है, हाँ है चाहे भटका ले तू दर दर इम्तिहान लाख भी देकर मंजिलें होंगी कदमों पर आजमा ले जिंदगी बैन दी टकी साली जिंदगी बैन दी टकी साली जिंदगी बैन दी टकी साली जिंदगी बैन दी टकी।
ओके अल्ताफ, बहुत दमदार गीत है और मुझे लगता है कि जब भी ये आएगा तो यकीनन सनसनी मचाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद जब आपको ये पहली फिल्म मिली और इसके गाने आपने कंपोज किए तो उसके बाद फिर इंडस्ट्री से रिएक्शन मिलना शुरू हुआ होगा आपको, तो वो कैसा था रिएक्शन और उसके बाद आपको और कौन कौन सी फिल्में ऑफर हुई?
हाँ जी, इमीजिएटली तो रिएक्शन नहीं मिला मुझे, कुछ टाइम बाद मैंने भी कई लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, लेकिन इस फिल्म के गाने कंपोज करने से एक फायदा जरूर हुआ कि मैं जहां भी जाता था तो ये गाने मैं बस रेफरेंस के लिए मैंने बोला तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिलता था जहां पे, ठीक है तो लोग सुनते थे कि अच्छा इनका काम क्या है आपने, अच्छा ठीक है तो सुनाइए आप क्या करते हैं, तो मैं ही खुद अप्रोच करता था जहां पर जहां जहां हो सके। तो धीरे धीरे फिर मुझे और एक फिल्म मिली, इश्क ने क्रेजी किया रे, एक मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है नरेश मल्होत्रा जी ने, जो ऐशराज के डायरेक्टर है जिन्होंने सबसे पहली फिल्म बनाई थी ये दिल लगी, जब भी कोई लड़की देखो ओले ओले वो वाली फिल्म, तो उनकी फिल्म थी वो, बहुत दिनों बाद और एक फिल्म बना रहे थे जो रोमांटिक फिल्म है, उसमें मुग्धा गोडसे है, निशांत मलकानी और मधुरिमा बैनर्जी उसमें स्टार कास्ट है, तो उसमें रोमांटिक गाने चाहिए था, तो उसमें मैंने फिर उनको अप्रोच किया, तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, मेरे गाने बहुत पसंद आए, कुछ नई कंपोजिशन उनकी फिल्म के हिसाब से मैंने बना के उनको सुनाई थी, कुछ अच्छे स्क्रैचेस बनाए थे तो उनको बहुत पसंद आए, तो उसमें उस फिल्म में फिर मेरे दो गाने हुए ऑफिशियली, ऑडियो में दो गाने हैं और फिल्म में और दो गाने ऐसे डाले, मतलब 4 टोटल सॉन्ग्स है उस फिल्म में मेरे, तो वो फिल्म मिली। फिर बाबूजी एक ट्रीट बम्बई भी उसके बाद मिली मुझे। फिर और 5-6 फिल्में हैं जो कंटिन्यू उसके बाद मुझे मिलना शुरू हुई है। जैसे एक वॉय कॉमेडियन की फिल्म कर रहा हूँ मैं, कॉमेडी फिल्म है जिसमें राजू श्रीवास्तव, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं जिसमें, उसमें भी मेरे सॉन्ग्स हैं। और फिर और एक मूवी है जो अभी रिसेंटली मैंने, साइंटिस्ट का काम मेरा जो चल रहा है, बीए पास एक मूवी आई थी जो बहुत चर्चित फिल्म थी, तो उसका नेक्स्ट वर्जन भी और आ रहा है। वो जो प्रोड्यूसर्स है तो उनके लिए मैं और एक पूरी फिल्म कर रहा हूँ टोटल, जिसमें म्यूजिक मेरा ही रहेगा। धीरे धीरे अभी काम और मिल रहा है, साइड बाय साइड मैं अपने सिंगल्स भी निकालता रहता हूँ, मतलब एज सिंगर मैं गाता भी रहता हूँ, और बहुत सारे यूट्यूब पे मेरे सिंगल्स रिलीज होते रहते हैं, एवरी वीक एवरी मंथ कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। और इस बीच मैंने एक पंजाबी मूवी भी की है जो 1 अप्रैल को रिलीज हुई थी इसी साल, जिसके गाने बहुत पसंद किए गए पंजाब सर्किट में, दिल्ली में, कैनेडा में, यूके में, उस गाने को बहुत सराहा गया है। उसमें जो लाभ जंजुआ जी का एक गाना था मेरा, वो भी बहुत पसंद किया गया है। फिर हंसराज हंस जी के बेटे उसके अंदर एक्टर थे और उन्होंने गाया भी है मेरा गाना, तो वो गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर कुणाल गांजावाला जी से एक गाना करवाया था, वो भी गाना लोगों ने बहुत पसंद किया। तो पंजाबी फिल्म इस बीच एक्चुअली आफ्टर मेरी पहली फिल्म साइन होने के बाद, एक्चुअली अगर कोई फिल्म मैंने किया है मतलब नॉन बॉलीवुड फिल्म, ओरिजिनल फिल्म, तो वो पंजाबी फिल्म मुझे मिली है मेरे अजीज मित्र डायरेक्टर रुपेश राय सिकन जी है, तो उन्होंने वो फिल्म मुझे ऑफर की। और मुझे उनका एक्चुअली मैंने पहले एक अल्बम भी किया था, ना हीरे नु सता एक अल्बम था, पंजाबी टच का अल्बम था, तो वो उसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा था, टी सीरीज से रिलीज हुआ था, तो उन्होंने उसके बाद ये फिल्म मुझे ऑफर की थी। फिल्म का नाम है कैनेडा दी फ्लाइट।
ओके अल्ताफ, हम एक सॉन्ग ब्रेक बीच में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी इसी पंजाबी फिल्म से हमें एक गाना सुनवाना चाहिए। लाभ जंबुआ जी, जिनका अभी हाल ही में निधन भी हो गया है, तो क्यों ना वो गीत हम सुनवाएं जो आपने उनको गवाया था जिस गीत के अंदर। तो प्लीज वो गाना कौन सा है और वो हमें बताइए कि हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं फिर।
हाँ जी, वो सॉन्ग है ढोल नगाड़े फ्रॉम द मूवी कैनेडा दी फ्लाइट।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, और मैं हूं आपका साथी सजीव सारथी। और आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं अल्ताफ सैयद, जो कि एक संगीतकार हैं, गायक भी हैं, और अभी हाल ही में इनकी एक ताज़ा फिल्म आने वाली है बाबूजी एक टिकट मुंबई। इसके अलावा भी वो बहुत सारी फिल्में कर रहे हैं जिनके बारे में वो हमें ब्रेक से पहले बता चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं इसी फिल्म के बारे में जो अभी जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो अल्ताफ आप बताइए कि ये जो फिल्म है बाबूजी एक टिकट मुंबई, इसके बारे में कुछ विस्तार से बताइए।
बाबूजी एक टिकट मुंबई ये बहुत ही रियलिस्टिक थीम की मूवी है, इसमें बहुत ही सच्चाई दिखाई दी गई आप सब लोगों को। जैसे आज के ज़माने में भी, मतलब 2016 में भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही पुराने ख्याल के हैं, बहुत ही पिछड़ी सोच के लोग हैं, आज भी मौजूद है हम लोगों के बीच। तो ये उन पर बेस्ड है कि कुछ ऐसी एक कम्युनिटी है जो जिनके साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, जिनको हमेशा यूज़ किया गया है, तो वो बेडनी बोलते हैं उन लोग को, तो उस पे बेस्ड ये पूरी मूवी है। उनकी जो लड़कियां होती है जो कम एज से ही उनको फ्लेश ट्रेड में बेच दिया जाता है, उनका मुकद्दर ही वो होता है कि वो जैसी जवान होगी तो वो बेच दी जाएगी। तो वो उनके जीवन पे आधारित ये मूवी है कि क्या होता है उनके साथ और कैसे होता है और वो किस चीज़ों से गुजरती है, वो उनके साथ कितने धोखे होते हैं, क्या क्या होता है। इसमें काफ़ी अच्छे स्टार्स हैं, जो राजपाल यादव जी ने बहुत अच्छी इसमें भूमिका की है, सुधा चंद्रन जी ने बहुत अच्छी भूमिका की है, फिर राकेश बेदी जी का बहुत अहम रोल है इसके अंदर, मिलिंद गुना जी का बहुत अच्छा रोल है। और इसमें म्यूजिक, हमने इस मूवी में कोशिश की कि मूवी भले ही रियलिस्टिक हो पर म्यूजिक थोड़ा सा कमर्शियल हो, ये उसमें ट्राई किया है हम सब।
जी अल्ताफ भाई, इसका ट्रेलर तो मैंने भी देखा और बहुत अलग लगी ये फिल्म मुझे बाकी फिल्मों से। मुझे यकीन है कि बहुत बढ़िया होगी, उसके गाने भी बहुत अच्छे होंगे। तो इसके गाने जब आपने रिकॉर्ड किए तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ कि कैसी रही रिकॉर्डिंग और किन किन सिंगरों को आपने लेकर इनको रिकॉर्ड किया और आपका फेवरेट गाना कौन सा है इस फिल्म में?
जी, इस मूवी में जो मेरा जो रोमांटिक गाना है वो ऑफकोर्स मेरा वही मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जो बेपनाह तुमको चाहे ख्वाबों में तुमको लाए दिल ना ये बाज आए मेरा मेहरबान, ये उस गाने के बोल है। और इसको सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया था मोहित चौहान जी के वॉइस में, फुल गाना हमने रिकॉर्ड किया था, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा मोहित जी के साथ जब रिकॉर्डिंग किए, तो बहुत ही हम मज़ा आया था हम लोग को इसको। बहुत ही कम लोग हम थे, मतलब जब रिकॉर्डिंग जब हुई तो बस मैं रिकॉर्डिस्ट और मोहित जी, बस हम तीनों ही एकांत में इसको रिकॉर्ड किया था, बहुत सुकून से इस गाने को रिकॉर्ड किया था और बीच में हंसी मजाक चाय की चुस्की लेते हुए बहुत ही हंसते खेलते ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। तो इस गाने की रिकॉर्डिंग में बहुत मज़ा आया था। ये गाना जब हुआ बाद में ऐसा हुआ कि इस मूवी में इन्होंने, मतलब जो प्रोड्यूसर्स हैं इन लोगों ने सोचा कि इसका फीमेल वर्जन भी होना चाहिए, उन्होंने कहा कि इस गाने को फीमेल वर्जन भी करते हैं। तो फिर मैंने अप्रोच किया पलक मुच्छल जी को, तो उनसे भी फिर सेम गाना इसका एक वर्जन गवाया। तो मूवी में रिक्वायरमेंट थी फीमेल वर्जन रखने की, तो मूवी में वही वर्जन रखा है, लेकिन बाकी ऑडियो और वीडियो दोनों वर्जन में इसका हमने रखा है।
अच्छा अल्ताफ भाई, अभी आप काफी काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपको काफी काम मिल भी रहा है, तो अब आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा है आपके इस संगीत को चुनने के फैसले के प्रति?
अब सब लोग को आ चुका है मुझ पे यकीन, आ चुका है कि नहीं ये कर सकता है, ये काम कर सकता है। और जैसे जैसे ये लोग मेरा काम देख रहे हैं, मेरे गाने सुन रहे हैं, और अभी आजकल मैं जो भी गाने नए बनाता हूँ जितना भी करता हूँ घर पे सबको सुनाता हूँ, तो उनका उनको सबको खुशी होती है कि नहीं बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ रहा है सब लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे पे और भी बढ़ रहा है, तो अब तो अच्छा रिएक्शन है और अब सब चाहते हैं कि बस अब यही करें, और जब कर रहा है तो अब यही करे और यही अच्छे से करे पूरा दिल लगा के यही।
अच्छा, आपकी सिस्टर आपके लिए गाने लिखती है, तो ये भाई बहन का जो रिश्ता है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो ये भी एक बहुत अच्छा संयोग है कि हम एक ऐसे संगीतकार के साथ बात कर रहे हैं जिसकी जो भाई बहन जो है आपस में मिलकर जो है गाने बनाते हैं, तो थोड़ा सा ये रिलेशनशिप थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए।
हाँ जी, मेरी सिस्टर लिखती है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ गाने में खुद ही कुछ ऐसा वाहियात, मैं जब लिखता हूँ तो बहुत वाहियात किस्म का लिखता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ उसका कोई मीनिंग ही होता नहीं है, तो ऐसे ही कुछ लिख के मैं खुद एक गाना कर रहा था डमी, मैंने सोचा था किसी और से बाद में फिर लिखवा लूंगा उसको अच्छे से कुछ कर लूंगा, तो एक गाना मैंने ऐसे ही बनाया था और ऐसे ही सुना रहा था घर पे। तो मेरी सिस्टर बोली, मेरे से छोटी है, मुझे बोली कि अरे ये क्या लिखा है, कम से कम ठीक तो कर लो, मीनिंगफुल तो कर लो, कुछ मीनिंग ही नहीं हो रहा है उसका। मैं बोला अरे ठीक है, वो मैं किसी करवा लूंगा प्रोफेशनल लिरिक सिस्टम में करवा लूंगा सही, तो वो तो उसने खुद मुझे बोला अच्छा ठीक है मुझे दे दो तब तक मैं उसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ, फिर आप सबको बैठ के सुनाओ ना ऐसे जो भी सुनाना। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ठीक करना है, बोल रही है तो बोल देंगे उसको दे देंगे, तो उसने आधे घंटे में वो उस मेरे सॉन्ग को इतना अच्छा करेक्शन किया उसमें, मतलब इतना अच्छा लिखा उसमें कि मैं खुद दंग रह गया। मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा लिख रही है, तो तब जब मैंने फिर सबको सुना, घर में सबको सुना, सबको पसंद आया, तो फिर मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उस पर कि अरे ये अच्छा लिखती है। तो उसके बाद मैंने फिर सेकंड सॉन्ग उसको
प्रोफेशनली उसको दिया लिखने के लिए, तो उसने बहुत अच्छा लिखा। और जितने भी फिर मैंने गाने किए हैं, मैं जहाँ भी जिस फिल्म में भी मैंने गाने किए, ऑलमोस्ट सभी फिल्मों में लिरिसिस्ट एज ए लिरिसिस्ट वही है। मतलब जहाँ भी मैं गाना सुनाता हूँ तो कहीं भी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे कि उसके लिरिक्स में चेंज करवा लूँ। तो ऐसा अब तक तो ऐसा ही हुआ कि उसी के लिरिक्स फाइनल हुए। बस कुछ जगह पर जहाँ पे कुमार जी के साथ मैंने काम किया है जैसे पंजाबी फिल्म में, वो तो अलग बात है, पर जहाँ पर जहाँ जहाँ मैं इसके लिरिक्स को लेके गाने बनाता हूँ वो एज इट इज विथ लिरिक्स गाने मेरे फाइनल हो जाते हैं। तो मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, हम बचपन से मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि मतलब हम साथ में ऐसे इस तरीके से हम काम कर पाएंगे। तो हम तो बहुत खुश है कि साथ में काम करने की हमारी मतलब ना सौभाग्य हो गया हम लोग का साथ में काम करने का।
जी अल्ताफ भाई, ये वाकई बहुत ताज्जुब की बात है और बहुत सुखद भी है और बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह की एक जोड़ी जो है इंडस्ट्री में काम कर रही है। अच्छा ये बताइए, कोई संगीतकार आपके पसंदीदा संगीतकार कोई है इंडस्ट्री में जिनका कोई गीत सुनकर आपको लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसा अगर मैंने बना लिया, कुछ ऐसा मैंने कर लिया तो ये जो मेरा सफर है ये कामयाब माना जाएगा, कोई ऐसा गीत है आप जो जहन में आता हो?
जी हाँ, मेरे आदर्श संगीतकार नौशाद साहब, मदन मोहन साहब, आर डी बर्मन साहब, ये इनको मैं बहुत सुन चुका हूँ, इनको बहुत सुनता हूँ, इनको बहुत फॉलो करता हूँ, पर मुझे पता नहीं मैं एक भी गाना उस लेवल का बना पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। और उसके अलावा फिर मेरे जो 90s के जो कुछ संगीतकार थे जो मेरे बहुत फेवरेट थे, मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा मुतासर था, वो है जतिन ललित जी, फिर आनंद मिलिंद जी और नदीम श्रवण जी, ये मेरे बहुत ही फेवरेट संगीतकार थे। मैं इनके म्यूज़िक स्टाइल को फॉलो करने की बहुत कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि उस टाइप के रोमांटिक गाने या उनके इतने कमर्शियली सक्सेसफुल गाने मैं दे पाऊँ। जैसे मेरी फेवरेट कंपोजिशन जो थी पुराना सॉन्ग लता जी का गाया हुआ, बहुत ही फेवरेट था, बहुत ही सुपर कंपोजिशन थी।
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा।
ये कंपोजिशन मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है।
और उसके अलावा
तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया।
जी अल्ताफ, जरूर आप जिस तरह के गाने आपने मुझे बताए और यकीनन जिस तरह का काम आप कर रहे हैं आज के तारीख में, तो मुझे यकीन है कि आप अपने इन आदर्श संगीतकारों के साथ ही अपने आप को जल्द ही पाएंगे। ऐसी हम सबकी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उन सबको लेकर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप खूब इसी तरह से तरक्की करें और हमारे इस कार्यक्रम में बार बार यूं ही आते रहें। आपके एक गीत बेपनाह तुझको चाहा पर मैं अपने श्रोताओं को छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। फिलहाल सुनिए ये गीत अल्ताफ सैयद का बनाया हुआ और मुझे यानी अपने साथी सजीव सारथी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
थैंक यू सो मच सजीव सारथी जी और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत थैंक यू आपके शुभकामनाओं के लिए। और होप हम ऐसे ही मिलते रहेंगे बाद में और भी प्रोग्राम्स में, हम जरूर साथ में बातचीत करेंगे। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।